نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. يا أيها النبي، أي نبي، نبي كريم صلى الله عليه وسلم کو ہے میرے نبی، قل لی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، وہ نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں. کیا چیز کہہ دیں جو اتنا اہم حکم ہے کہ بیویوں سے بھی کہیں؟ الگ سے کہا، حالانکہ نساء المؤمنین میں سارے ہی آ گئے، لیکن بیویوں سے بھی کہہ دیں. پھر یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے، آج کے وقت میں آنے والے جیسے ہیں، کہ کوئی یہ کہہ دے یہ تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے صرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہتے. پھر یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ آپ کے اہل بیت کے لیے ہی ہے، اس لیے فرما دیا گیا خاص طور پہ انساء المؤمنین، اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. حالانکہ آپ دیکھیں جو حکم ازواج کے لیے ہے، ازواج مطہرات کے لیے، وہ حکم ساری مسلمان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی وہ رول ماڈل ہے، ان کو ویسے ہی ان کو دیکھ کے فالو کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پہ یہاں پہ الگ الگ کر کے کہہ دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ حکم کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہاں پہ سرکل بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس حکم کو جو آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھ ہی لے، کوئی کہہ ہی دے کہ نہیں جی، قرآن میں جو ہے نا وہ پردہ صرف بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا اس کو سرکل کر لیں کہ آپ کو یاد رہی یہ بات کہ اس آیت میں نساء المومنین کا ذکر ہے. کیا کریں وہ، کیا حکم ہے سب کے لیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیں اپنے اوپر سے. اپنے اوپر سے کا مطلب کیا؟ اچھا، یہاں پہ آپ اتنی تھوڑی سی بات کو سمجھیں کہ جب کہا جائے کہ اپنے اوپر سے لٹکا لیں، تو اوپر سے لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے اپنے سر کے اوپر سے لٹکا لینا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا ریپ اراؤنڈ کرنا، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ مانا لیا کہ لپیٹ لیں. لپیٹنے کا معنی اس صورت میں ہوتا اگر اس کا یہاں پہ آتا یدنینا الیہن، الا ہوتا الا، الا اور علا میں آپ مانا اب سمجھتے ہیں نا، دونوں میں فرق سمجھتے ہیں. تو اپنے اوپر سے جب آ گیا تو پھر معنی بدل گیا، پھر لٹکانے کا معنی آ گیا. اگر الا کا معنی آتا تو پھر قریب کر لیں، اپنی طرف ایسے کر لیں، لپیٹ لیں. تو جو عربک کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ معنی میں فرق آ جاتا ہے. من جلابی بہن، اب یہ کس چیز کو لٹکا لیں؟ اپنی جلبابوں میں سے، اپنی چادروں میں سے. اب اس کا معنی ذرا دیکھ لیتے ہیں. جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کا معنی دوپٹہ نہیں ہے. دوپٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خمار، جس کا ذکر سورہ نور میں آیا، اور ہم پردے کے احکامات سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل میں ہم نے بہت دیکھے تھے. حالانکہ یہ حکم پہلے آیا اور سورہ نور کا حکم بعد میں آیا. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ جلباب. جلباب کے اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ چادر جو سر سے پیر تک بڑی ہو، وہ اس کو کہتے ہیں جلباب، جو سر سے پیر تک ڈھانک لے. تو اس کا مطلب ہے، اور اس کو لٹکانے کا معنی ہے، اس کو لٹکانا، اس کا مین جلابی بھی، یعنی اس میں سے بعض حصہ، یعنی کہ بعض حصہ لٹکا لیں گے. پوری تو آپ نے لی ہوگی، ظاہر ہے سر پہ ہی چادر لیتے ہیں. اب آپ کو کہیں مثلا چادر کا بھی، اب یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں، آپ کہیں کہ شاید نہیں چادر کیسے لٹکانی ہے تو کہاں سے لٹکانی ہے. بات یہ ہے، جب چادر لٹکانے کا کہا گیا تو ظاہر ہے چادر سر پہ ہی لی جاتی ہے، چادر پیر میں تو نہیں پہنی جاتی. یہ الگ بات ہے، آج کل آپ نے شالیں ایسی نکال لی ہیں کہ ان کو گرد لپیٹ لیتے ہیں، لیکن جو چادر ہوتی ہے وہ سر پہ لینے کی چیز ہے، جیسے دوپٹہ سر پہ لینے کی چیز ہے. جیسے قمیض جو ہے وہ اوپر پہنتے، قمیض کو آپ ٹانگوں میں نہیں پہن لیں گے، شلوار کو آپ بازوؤں میں نہیں پہن لیتے، शलवार का मतलब ही, शलवार से आप क्या समझते हैं ना, कि आपकी जो टांग है उसका लिबास है, ये कमीज आपके ऊपर का लिबास है। तो इसी तरह चादर लफ्ज से ही पता चल जाता है, जैसे जूती से पता चल जाता है कि जूता पाँव में पहनने वाली चीज है, हाथों में नहीं, तो उसकी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह चादर जो है वो सर पे ओढ़ने की चीज है। अब उसमें से कुछ हिस्से को लटका लो, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जिलबाब जो है सिर्फ सीने पे पड़ा हुआ दुपट्टा नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ शर्ट को कवर करता हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपका स्कार्फ जिलबाब कहलाए। जिलबाब का, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसी लंबी चादर जो सर से पैर तक हो, यहां तक कवर करे, तो शर्ट के ऊपर के हिस्से को अगर ढांप लेगी या शलवार के आधे हिस्से को ढांप लेगी तो वो वाली बात तो नहीं बनेगी ना, जिलबाब तो पांव तक हुआ। अब इसका कुछ हिस्सा लटकाना है तो ये कैसे होगा, जैसे घूंघट लटका देते। इस बात को जरा गौर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये मसले मसाइल औरतों से मुतल्लिक है ना, ठीक है, और इन बातों में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए इस आयत को गौर से समझिए, क्योंकि हुक्म बिल्कुल क्लियर है। यहां से हमें ये पता चल गया, बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कि जो लोग ये कहते हैं कि हिजाब और बुरके और ये बस मौलवियों की खुद ही इजाद है, और देखो जरा बस खुद ही बना के बैठ जाते हैं और ऐसे करते हैं, और कोई भी नहीं है, कहाँ है कुरान में कि सर को कवर करो, बालों का जिक्र कहाँ पे, ये है। तो देखिए, जिलबाब का जब जिक्र आ गया तो जिलबाब को पैरों में तो नहीं पहन लोगे ना, ये भी अब बताने की जरूरत पड़ेगी कि जिलबाब कहाँ पहनना। सॉक्स मैं कह दूं लव सॉक्स, तो क्या आप समझ नहीं जाओगे सॉक्स कहाँ पहननी है? जब मैं कहूँ सॉक्स को ऊपर से जरा फोल्ड कर लें, तो आपको पता होगा ना सॉक्स कहाँ पे है। जब आप टांग के ऊपर पहनेंगे, सब पाँव में पहनेंगे, ऊपर जाएगी सॉक्स, तो वहां से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, उसको लटका लेंगे। अब इसी तरह जब जिलबाब कह दिया तो लफ्ज जिलबाब से ही पता चल गया कि भाई सर पे ही पहनोगे ना, उससे बाल तो कवर ही होंगे, उसको भी बल्कि लटका लो आगे, यानी अब क्या हो गया कि उससे चेहरा भी कवर हो गया। तो ये बाद में इजाद नहीं हुई चीजें, ये आप देख लें, अब ये हुक्म आपके सामने है। मुझे इतना दुख होता है ना कि जब मुझे सुना कि किसी ने कहा कि भाई क्लास में ना जाओ, वरना तुम्हें भी इसी तरह ये अपनी तरह बना लेंगे, इसी तरह तुम भी अबाया पहनने लग जाओगी। तो भाई कोई किसी को कुछ पहना नहीं सकता, कोई कुछ किसी को नहीं करवा सकता। आप 100 क्लासें ले लें, चाहे आप सारी जिंदगी कुरान पढ़ते, कोई किसी को नहीं कुछ करवा सकता। जब तक इंसान के खुद दिल में ये आयतें पढ़ के उसका सीना खुल नहीं जाए और खुद दिल में एंटर नहीं हो जाए ये चीज, खुद शराय सदर नहीं हो जाए, खुद वो करना नहीं चाहे, कोई नहीं करवा सकता। और इसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म अगर वाकई हम मानने वाले बन जाए तो इसमें तो किसी को यानी शर्मसारी नहीं होनी चाहिए, किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए इस चीज की। फिक्र तो इस चीज पे होनी चाहिए कि जब हम अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते। तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये कर लो, इस तरह से लटका लो, क्यों, इसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी। क्या वजह है? कोई अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई सख्ती करना चाहते हैं, पाबंदी करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं? नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका, ये अदना, करीब तर है, अन युअरफना, कि वो पहचान ली जाए। कैसे पहचान ली जाए? अब इसके ऊपर भी लोगों का बड़ा एतराज होता है, जी पहचान ली जाए तो क्या इसमें पहचान होगी, जी हमारा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो पहचान करने के लिए तो यानी नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तो हमारी तो कहाँ से पहचान होगी, इसलिए हम इसको उतार देते हैं। बात ये है, पहचान का मतलब ये नहीं कि आपका नाम पता चल जाए, किसी को ये पता चल जाए अच्छा ये फलां की बेटी जा रही है। पहचान का मतलब है कि ये पता चल जाए ये मुसलमान औरत है, ये शरीफ औरत है। क्योंकि देखिए बास चीजें क्या, अक्सर चीजें ही आप बोल के नहीं बताते, आपका हाल हुलिया बताता है कि नहीं, ये बात आपका हाल हुलिया बताता है कि आप एक शरीफ औरत हैं, आप एक पर्देदार औरत हैं, आपकी तरफ कोई अप्रोच करे तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी उसको कुछ, यानी आप ऐसा सुना देंगी क्योंकि आप ऐसी वैसी औरत नहीं है, ठीक है? एक पर्दे में जा रही है औरत, उसका लिबास ही ये मैसेज दे रहा है। अब इसके बरक्स देखें, एक लड़की है जिसने बाल कोले में और उसने ऐसे चुस्त कपड़े पहने हुए हैं, सी थ्रू कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा गले में डाला हुआ है। अब मर्द को पता चल जाता है इससे साथ बात करूंगा ना तो ये बात करने देगी, ये बात कर लेगी। यकीन करें आपका लिबास इतना बड़ा मैसेज है। और मेरे ख्याल में आप में से अक्सर बहनें मेरे साथ इसमें एग्री करेंगी कि जब आपने जिलबाब, स्कार्फ ये सब शुरू किया, खुद ब खुद मर्द आपसे कतराने लगते हैं। थोड़ा आप तो मुश्किल से ही सलाम भी करेंगे, उनको पता है कि यहाँ पे नहीं, थोड़े केयरफुल हो जाएंगे कि नहीं भाई मुसलमान भी, यानी बाहर के तो थोड़ा वो झिझक ही जाते हैं, अपने मुसलमान मर्द भी, यानी वो इतने आपसे जैसे पहले खिलखिल के बात करते थे, हंस हंस के बात करते थे, उस तरह से नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, वो इतनी जुर्रत नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या मैसेज हुआ, किसने मैसेज दिया, आपने कुछ बोला उनको? नहीं, आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे सलाम करने के लिए, आपकी पहचान है। आप सोचे, मेरे साथ इस तरह से वाकया, पर्सनल आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरे घुटने के एक्सरेज थे, तो जब मैं वहां पे गई एक्सरे रूम में, तो एक मर्द था वहां पे। अब उसने जब मुझे देखा ही, तो हालांकि मैंने कुछ भी नहीं अभी बोला था, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, वो मुझे कहने लगा कि डू यू वांट कि मैं कोई फीमेल आपके लिए भेजू? मैंने कहा, वो खुद ब खुद कमरा छोड़ के चला गया। अब आप बताइए ये किसने मैसेज दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। आपका लिबास मैसेज देता है, ये आपकी पहचान है कि देखो नहीं, नो वैकेंसी का बोर्ड है, नॉट अवेलेबल, ठीक है? ये आपका लिबास बताता है, ये एक सिंबल है मुसलमान औरत का, तो इस चीज से पहचान ली जाए। कहीं मर भी गई तो लोगों को पता होगा कि ये मुसलमान औरत है, देखो इसने हिजाब अबाया ये सब किया हुआ। फला युज़ैन, फिर ना वो सताई जाए, उनको कोई सताए नहीं। ऐसे था कि उस वक्त में जैसे हम इस सूरत को देख रहे हैं, मुनाफिकीन का तर्ज अमल जो था, और हमने देखा किस तरह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं दे रहे थे, आपने ये शादी क्यों कर ली, आपने ऐसे क्यों कर लिया, लो जी हमारे लिए अलग कानून और अपने लिए अलग बनाए हुए हैं, खुद शादियां कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं बस चार ही औरतें रखो, और खुद देखो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, हमें कहते हैं बहू बेटियों की ताजीम की जाए और खुद देखो बहू से शादी कर लिया, इस तरह की बातें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को भी नहीं छोड़ा। और ऐसे वो थे लोग के जो है ना औरतों से छेड़छाड़ करते थे जब वो बाहर निकलती थी, तो कह दिया गया कि अब से मोमिन औरतों का पता चल जाना चाहिए कि ये मोमिना है, ताकि उनको ना छेड़े, इसके बाद पता चल जाए ये शरीफ मुअज्जज़ औरत है। लौंडियां जो थी वो इस तरह से फिरती थी कि वो उनको हिजाब की कैद नहीं थी इस तरह से, तो अब कोई ये ना कह सके कि अच्छा हमने तो समझा कि शायद ये लौंडियां हैं, तो इसलिए हम इनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इनके साथ ऐसे बातचीत कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, तो आपका लिबास बता दे कि ये शरीफ औरत है। कोई ये कहने के काबिल ना हो कि हमने तो मिसअंडरस्टैंड किया, ताकि वो सताई ना जाए। इससे बात पता चलती है कि देखो अल्लाह ताला को कितना ख्याल है एक औरत का कि उसकी इज्जत ना उछाली जाए, सरे बाजार उसको सताया ना जाए। हम देखें हमारे मुल्कों में कितना औरतों को आवाजें कसी जाती हैं, छेड़खानियां की जाती हैं, कोई राह चलती जा रही हो बाजारों में उसके ऊपर कोई फिक्रे कसे जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, कोई कुछ बात करना शुरू हो जाता है। तो जो ये हिजाब है, जो ये आपका पर्दा है, ये तो मुसलमान औरत के लिए एक ब्लेसिंग है, ये एक तकलीफ नहीं है, ये तो एक ब्लेसिंग है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये ऐसा हुक्म दे के तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकान अल्लाह गफूर रहीमा, कोई अल्लाह के बारे में ना समझे कि कितनी सख्ती कर दी, हाय अल्लाह ने हमें कितने मुश्किल में डाल दिया, हाय हम कितनी तकलीफ में, नहीं अल्लाह ताला तो तुम्हारे पर गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, बख्शिश करने वाला है। एक ये भी बात है कि जब ये हुक्म तुम मानोगी तो इसके बाद अल्लाह ताला ने जो पिछले तुमने ऐसे हुक्म अदूलियां की हुई हैं, जो बेहिजाब तुम घूमी हुए, तो अब तौबा कर लो कि अब ये हुक्म तुमने सुन लिया तो अब तौबा का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, अभी भी मान जाओ अल्लाह गफूर रहीम है। और दूसरी बात यह है, इस हुक्म को देने के बाद इन सिफात का जिक्र क्यों किया कि अल्लाह ताला को कोई ये जाबिर जालिम ना कहे, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे के कोई जुल्म नहीं किया, अल्लाह ताला तो तुम पे रहम करने वाला है, उसकी तो शफकत है, उसकी तो मेहरबानी है कि उसने ये हुक्म तुम्हें दिया, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि उसके बंदों के दिल कैसे हैं, वो जानता है कि उसके बंदों के दिलों में कैसे खदशात, कैसे मेलानात, उनको अट्रैक्शंस कैसी होती हैं, मर्दों को कैसी अट्रैक्शंस होती हैं औरत की तरफ, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है इंसान की नीड्स क्या है। उसने इसीलिए निकाह का एक दरवाजा खोला है कि उससे अपनी नीड्स पूरी की जाए, और बदकारी के सारे दरवाजे बंद कर दिए, इवन वो रास्ते जो कभी जिना की तरफ ले जा सकते इंसान को, उनको भी बंद कर दिया, जिनमें आपने देखा है सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं, नजरों पे पहरे बिठाए अल्लाह ताला, नजरें नीची कर लो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, जीनत का इजहार ना करती फिरो, और मर्दों औरतों की इंटरमिंगलिंग ना हो, पर्दे के पीछे से बात करो, कोई चीज की जरूरत भी हो किसी से तो जरूरत में भी आमने सामने ऐसे मुंह झाड़ सर पाड़, क्या होता है पता नहीं मुहावरा, कि इस तरह ना सर सामने बिल्कुल खड़ी हो जाओ कि बिल्कुल डायरेक्ट आदमी की नजर तुम्हारे चेहरे पे पड़े, तुम वो भी पर्दे के पीछे रहो। इसी तरह यहाँ पे फिर हुक्म दे दिया, ये नहीं है कि अल्लाह ताला माफ करे कि कोई हर एक मर्द औरत ने कोई इस तरह का करना था काम। अब सबसे पहले तो वरना ये कहना चाहिए कि लो अजवाज मुतारात, उन्होंने कोई ऐसा काम करना था, नऊज़ुबिल्ला, उनसे तो कभी इस तरह के बात का सोचा भी नहीं जा सकता। और सहाबा कराम जो उनको अपनी माओं की तरह समझते थे अजवाज मुतारात को, बल्कि उनकी माएं ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी माएं हैं, तो उनके साथ कभी ऐसी बात होने का तो कुछ सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन स्टिल अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिए, तो कोई ये ना कहे लो भला हमने ये काम करने थे, लो भला हमें ये समझा हुआ कि हमने ऐसे करना था, आप तो हम पे शक करते हैं, आप तो हमें ऐसे समझते हैं। नहीं, किसी को कुछ समझता नहीं है बुरा। मैंने जैसे आपको पिछली दफा भी बताया था कि आप बुरे नहीं है, मगर शैतान तो बुरा है ना, शैतान तो बुरा है ना, वो तो बातें जहनों में भी डालता है ना, उसे तो कोई महफूज नहीं है ना, वो तो वसवसे डालता है। जैसे किसी ने ख्वाब में शैतान को देखा, कहा जाता है, एक कहावत में आता है कि शैतान से उसने कहा कि मुझे कुछ नसीहत करो, उसने कहा मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ, कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने इस तरह से देखा, उसने कहा मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ, बात बिल्कुल सही है, उसने कहा कभी किसी औरत के साथ अकेले ना होना। जब एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं तो औरत चाहे राबिया बसरी हो और मर्द चाहे जुनैद बगदादी हो, लेकिन मैं वहां पे मौजूद हो जाता हूं। अकेले होंगे जब भी दोनों ना, तो शैतान तीसरा वहां पे मौजूद हो, अकेले नहीं रहना। इसलिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक पाकीजा माशरा हो, पाक हो माशरा, जहां पे नजरों की भी हिफाजत हो, दिलों की भी हिफाजत हो, आगे फिर नस्लों की भी हिफाजत हो जाए। तो अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दे के मोमिन औरत की हिफाजत की है और पूरे माशरे की हिफाजत की है। इस तरह से आप देखें दुनिया में जितनी कारामत चीजें सब पर्दे में है। सोना आप कहाँ कहीं बाहर देखते हैं पड़ा हुआ, गिरा पड़ा सड़कों पे देखते हैं, कितनी खोज लगानी पड़ती है, सोना कानों में मिलता है। हीरों को देखें, हीरों की काने हैं, मोतियों को देखें, सीप के मुंह के अंदर है। आप और तो और आज आप चार्ट बनाएंगी ना तो आप फ्रूट्स को देखना, सारे फ्रूट्स पर्दे में है, केले को देखें पर्दे में, ऑरेंज को देखें पर्दे में, अंगूर को देखें उसका भी पर्दा है, उसका ही एक छिलका। क्यों होता है ये छिलका, क्यों उसके बगैर क्यों नहीं? हम कहते हैं गल सड़ जाएंगे अगर उसके बगैर होंगे, तो क्या इंसानी जिंदगी को गलने सड़ने से महफूज नहीं करना? हाँ, कि नजरें ना खराब हो जाए, दिल ना खराब हो जाए, फल तो खराब हो जाता है अगर उसको ऐसे रखा जाए। केले को देखें, उसका कवर ना हो थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा। सेब को देखें, उसका कवर ना हो, छिलका ना हो, ऐसे ही अल्लाह पैदा कर देता, उसका पर्दा ना होता तो कैसा होता, थोड़ी देर में चंद मिनट में आप उसको बाहर रखें कैसा ब्राउन हो जाता है। तो सेब से तो कहीं ज्यादा कीमती औरत है, अगर उसको भी ओपन रख दिया जाए तो आप क्या सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगाहें उस पर नहीं पड़ेंगी? जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती ना उतनी ही पर्दे में होती है, और जब औरत पर्दा करती है तो पता है किसकी मुआफ़कत करती है, किसकी मुआफ़कत करती है? हमारा रब, हमारा रब्बुल इज़्ज़त, रब्बे करीम खुद हिजाब में है, नूर के पर्दे हैं उसके सामने। ये नहीं है कि सब उसको देख सकेंगे, खास खास लोग ही देख सकेंगे। तो औरत जो पर्दा करती है तो देखो किसकी मुआफ़कत करती है, किसके जैसा अमल हो रहा है कायनात में, जो सब कीमती चीज़ें हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हिजाब में। कितना बड़ा ऑनर औरत को भी दिया गया कि उसको भी पर्दे का कहा गया। तो इसमें कभी भी ना ये सोचे कि ये आपके लिए कोई मुश्किल है, ये आपके लिए कोई परेशानी के लिए, तकलीफ के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया। ये तो आपके लिए ऑनर की बात है, क्योंकि आप इतनी कीमती हैं, आपकी इज्जत इतनी कीमती है, इस पे जरा सी भी मैली नजर ना पड़े, इस पे जरा सा भी किसी का फिक्रा ना पड़े। और फिर आप कहते हैं अच्छा चलो बाहर वाले, हम कौन सा गंदे मर्दों में जाते, हमारे तो जानने वाले बहुत पाक साफ नजरों वाले, बहुत पाक साफ दिलों वाले। आपको क्या मालूम कि किसी की नजर क्या है, आपको क्या मालूम किसी के दिल में क्या बातें उठती हैं, हम नहीं जानते। आपको क्या मालूम है कि जब आप बाहर निकलते हैं घर से, जितनी नजरें आपको देख रही हैं, वो किस नजर से आपको देख रहे हैं? क्या तमाम नजरों की गारंटी आप ले सकती हैं? क्या तमाम जानने वालों के दिलों की गारंटी आप ले सकती हैं? बहुत सारी बातें, एक पूरी किताब है पर्दे के ऊपर, उस पर अगर पूरा लेक्चर भी इस पर किया जाए तो कम है, वक्त कम है और बातें तो बहुत सारी हैं। मगर बात यह है, आप इंशाल्लाह ताला वेबसाइट पे आपका होमवर्क है कि आप सुने जो पर्दे का लेक्चर है, थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगी। बहुत सारे ऐसे वाकयात किताबों में लिखे भी हुए हैं, और आप रोज़ खबरों में भी खैर पढ़ते हैं, इतनी कोई ऐसी बात नहीं अनोखी मैं आपको बताने लगी। आप खबरों में देखते हैं, सुनते हैं, नाजायज ताल्लुकात किसके साथ हो गए, बहनोई और साली के हो गए, इस तरह के बहुत से वाकयात आप सुनते हैं, है ना? और फिर देवर भाभी के साथ गलत बात हो गई, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया शौहर को, उसके प्रिय हो गया, फिर बाहर किसी के साथ इश्क मुआशका चल गया औरत का, और फिर उसके खामिंद को कत्ल कर दिया गया, फिर उसके बाद इसी तरह के मर्द के बॉस ने उसकी बीवी को देख लिया तो उसके ऊपर गलत नज़र उसकी गई, और फिर उसके बाद वहाँ से मसले शुरू हो गए। फिर दोस्त ने अपनी दोस्त की बीवी के ऊपर गलत नज़र डाली और फिर उधर से मसले मसाइल शुरू हुए। मैं अब इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने कभी सुनी ही ना हो, अनोखी बातें हम सुन रहे हैं, अच्छा ये तो हमें कभी पता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत चाहते हैं, आपसे कोई बैर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि औरत पर्दे का ही नाम है, जब ये अपने घर से निकलती है तो शैतान उसको ताकता है, और अल्लाह की रहमत में उस वक्त होती है जब ये अपने घर में होती है। जब घर से निकलेगी शैतान पीछे लग जाएगा। अब शैतान क्या करता है, जो लोग हैं बाहर के जो मर्द हैं उनके दिलों में जाके बातें डालता है कि इसकी तरफ देखो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना केयरफुल होने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन औरतों के शौहर बाहर गए हों उनके पास ना जाओ, यानी मर्दों को कहा गया कि उनके पास ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम में से हर एक के अंदर खून की तरह गर्दिश कर रहा है। क्योंकि भाई आपके शौहर का दोस्त आया दरवाजे पे, आपने कहा आ जाए अंदर बैठे, अब आप उसके पास बैठ गई हैं, शौहर घर पे नहीं है। क्या पता अल्लाह ताला माफ करे शौहर के दिल में ही शैतान कोई ऐसा वसवसा डाल दे और वो ही शक करने लग जाए बीवी पे। कितने आदमी होते हैं शकी मिजाज, तो ऐसा मौका ही ना दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं बैठो, नहीं जाओ। फिर एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत पर्दे के अंदर रहने की चीज है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको ताकता है, औरत اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہے. اور عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا عورت کے لیے بہتر کیا چیز ہے. سارے صحابہ خاموش ہو گئے, کچھ جواب نہیں دیا. پھر جب میں گھر گیا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا عورتوں کے لیے سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے. تو میں نے ان کا یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ نے فرمایا, انہوں نے درست کہا, بے شک وہ میرے جگر کا ٹکڑا, یعنی بالکل صحیح کہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے بھی پردہ کیا. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو لوگ بات کو سن کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, علل اعلان ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے, مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جنہوں نے علل اعلان گناہوں کا ارتکاب کیا. اعلانیہ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا, اگر ہم آیت کے اس میں اچھی طرح اور سمجھیں اس آیت کو, کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلے گی تو انہی کپڑوں میں نہیں نکل کے چلی جائے گی جو اس نے گھر میں پہنے ہوں گے. جو گھر میں شلوار قمیض پہنتی ہیں یا پینٹس پہنے, کچھ بھی آپ نے پہنا ہو گھر کے اندر, آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ بھی پہنے. اب کچھ عورتیں پوچھتی ہیں گھر میں جینس پہن لیں, بھائی جینس پہنے, ٹائٹس پہنے, کیا پہنے. ہاں مطلب اتنا تھوڑا سا لحاظ رکھیں کہ اگر آپ کے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں, آپ کے والد ہیں گھر میں, آپ کے سسر ہیں گھر میں, ایسے رشتہ دار ہیں, حالانکہ وہ محرم ہیں, لیکن اس طرح سے جیسے آپ اپنے شوہر کے سامنے ہوتی ہیں اس طرح سے ان کے سامنے بھی ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی وہی سر جھڑ منہ پھاڑ والی بات ہے کہ بالکل ہی ان کے سامنے ایسے آپ آئیں کہ بالکل ہی بنیان پہن کے گھومنے لگے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اس چیز کا بھی ذرا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی ہیں, بیٹے ہیں, باپ ہیں, وہ ان کے سامنے اس طرح سے لباس نہیں ہے جیسے شوہروں کے سامنے ہوگا, ٹھیک ہے, مگر ویسے آپ جو مرضی پہنے گھر میں. اب لیکن جب باہر جانے لگے تو پھر وہ کپڑے نہیں پہن کے جا سکتے, بلکہ آپ کے کپڑوں میں کیا ہونا چاہیے, جلباب ہونا چاہیے, یعنی آؤٹر کورنگ ایک ہونی چاہیے, اس کے اوپر کا ایک کپڑا ہونا چاہیے جو اوپر سے لٹکا ہوا ہو. اب اگر عورتوں نے اسی طرح سب کے سامنے ہی جانا تھا, اسی طرح ہسبینڈ کے دوستوں کے سامنے بھی جانا ہے, اسی طرح ہسبینڈ کے سامنے بھی جانا ہے, گھر میں تیار ہو رہی ہیں, بلکہ ان کے سامنے تو زیادہ ہی اچھا بن سنور کے جانا ہے کیونکہ وہ تو پارٹی میں آپ جا رہے ہیں, اور جب گھر میں ہسبینڈ کے لیے صرف تھیں تب تو کچھ بھی نہیں تھا, تو ان کے لیے تو زیادہ ہی تیاری ہو گئی. حالانکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ کن کے سامنے آپ اپنے پردے کے بغیر جا سکتی ہیں, اور اس چیز میں آپ نے پوری ڈیٹیل پوری لسٹ پڑھ لی ہے آیت نمبر 55 میں. آپ دیکھ لیں کہ نہیں کوئی گناہ اپنے باپوں کے بارے میں, اپنے بیٹوں کے بارے میں, بھائیوں, بھانجوں, بھتیجوں اور عورتوں کے اور جو لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان کے سامنے پردے سے جائیں, تو اس کا مطلب باقیوں کے سامنے گناہ ہے نا کہ نہیں, بتائیں, ورنہ اس آیت کی کیا ضرورت تھی, اتنی لمبی لسٹ دینے کی کیا ضرورت. قرآن پاک میں ایسے ہی بیکار تو نہیں باتیں لکھی ہوئی کہ ایک ایک چیز کو گنوایا جائے, اور سورہ نور میں بھی ہم نے یہ سب رشتے پڑھے تھے, آپ اس میں دوبارہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح آیا تھا کہ زینت کا, اپنے حسن کی نمائش نہ کرو, اپنے لباس, اپنے زیور, اپنی یہ سب چیزیں, جنہوں نے اس کے اندر چہرے کو بھی لیا, انہوں نے کہا چہرے کو بھی کور کرو کیونکہ وہ بھی زینت ہے تمہاری. زینت چہرے سے زیادہ کیا زینت ہو سکتی ہے, کیونکہ چہرہ ہی عورت کی بیوٹی ہے. آپ دیکھیں کسی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی جاتا ہے, کوئی کہے کہ اچھا اس کو چہرہ نہ دکھایا جائے, یا آپ تصویر بھیجتے ہیں نا تو ای میل میں تصویر نہ بھیجیں, آپ اس کے ہاتھ اور پیر بھیج دیں, ہاتھ پیروں کی تصویر بھیج دیں, کیا سیٹسفائیڈ ہو جائے گا دوسرا بندہ جس نے شادی کرنی ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے وہ کہے گا منہ تو دکھاؤ, شکل تو دکھاؤ, شکل ہی تو اصل چیز ہے, چہرہ ہی تو اصل چیز ہے جس سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ اسکارف کے اشتہار جو ہیں, یہ کہ بھی اتنی حیرت ہوتی ہے جب انسان کو سمجھ نہیں ہوتی تو پھر دیکھیں اس طرح کے پردے ہوتے ہیں, اس میں اتنی خوبصورت صرف چہرہ دکھایا گیا ہوتا ہے اور انہوں نے سکارف لیا ہوا ہے, اس کے اندر اللہ جانے کس طرح کا میک اپ کر کے اور کیسے ان کو کیا ہوتا ہے, وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں کہ الٹا میرے خیال میں بہتر تھا کہ اس طرح کا سکارف کا اشتہار دیتے ہی نہیں. وہ الٹا اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی جتنا کہ سکارف کے بغیر لگنی. تو اس کا مطلب چہرہ خوبصورتی کا یعنی مین جگہ ہے نا, جہاں سے آپ کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے. کسی عورت کو بھی آپ خوبصورت کب کہتے ہیں؟ جب اس کی شکل دیکھتے ہیں یا پیر دیکھ لیتے ہیں, ہاتھ دیکھ لیتے ہیں. تو اسی سے یہ پھر آیا کہ یہ اپنی چادروں کو اس طرح لٹکا لیں. اچھا, اب ان چادروں کو آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابایا پہننے میں, تو ابایا بھی چادر کوئی سینے کا ایک فارم ہے کہ اس کو سی لیا تاکہ آپ کی موومنٹ آسان ہو جائے. ورنہ اصل میں تو لوگ کہتے ہیں نا برقعے کا کہاں ذکر ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, برقعے کا نہیں ہے ذکر, چادر کا ہے, جلباب کا ہے. جلباب اس بڑی چادر کو ہی کہتے ہیں. اب اس بڑی چادر کو سی لیں گے تو پھر واقعی اس کو چادر کی طرح کا ہی لگنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ایسے لگنے لگے کہ ایک شرٹ کے اوپر دوسری شرٹ پہن لی آپ نے, وہ نہ لگے پھر. تو اس کے اندر ایک دو چیزیں جو اور میں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو اختلاف ہے اور اس میں تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, جتنے بھی امام ہیں وہ ایگریڈ ہیں جن پوائنٹس پہ, وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ بھئی کہاں ڈس ایگریمنٹ ہے, اختلاف کہاں ہے, وہ بھی آپ کو پتا, میں آپ کو بتا دوں گی تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو اپنی وکالت کر رہی ہیں یا کچھ. نہیں, میں آپ کے سامنے سب طرح کے پوائنٹس رکھ دوں گی تاکہ آپ کو خود معلوم ہو, آپ کو خود پتا ہو, آپ کس سے بات کر سکیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اسکالرز اس کی حمایت میں ہوتے ہیں وہ صرف حمایت کی ہی چیزیں بتاتے ہیں, جو اس کے خلاف ہیں وہ اس کی صرف خلاف کی چیزیں بتاتے ہیں. میں آپ کو دونوں طرح کی باتیں بتاؤں گی تاکہ آپ کے سامنے ساری پکچر کلیئر ہو جائے. جن چیزوں میں تمام آئمہ کرام کا, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, حنفی ہوں, سب کا اتفاق ہے, وہ کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے اجنبیوں کے سامنے اپنے چہروں کو چھپانا واجب تھا, ضروری تھا. نمبر ون یہ چیز, ٹھیک. نمبر ٹو یہ چیز کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے سارے جسم کو ڈھانپنا تمام عورتوں کے لیے ضروری ہے. سارے جسم کو ڈھانپنا سوائے چہرے کی, یہ ٹکیا جو ہے اتنی سی اس اور ہاتھوں کی, یہ اس پہ سب کا اتفاق ہے. سر کے بال ہو, گردن ہو, سینہ ہو, اس میں سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ سب نے کور کرنے ساری عورتوں نے. نمبر تھری چیز جس پہ سب ایگریڈ ہیں وہ ہے کہ اگر چہرے پہ کوئی زینت ہو, کوئی بیوٹی ہو, کسی طرح بھی چہرے کو بیوٹیفائی کیا ہو, کیا ہو, چاہے آپ نے کوئی نوز پنز پہن کے کیا ہو, چاہے آپ نے کوئی میک اپ کر کے کیا ہو, تو اس کو چھپانا واجب ہے. اب یہ میں بتا رہی ہوں نا, سب آئمہ کرام اس پہ ایگریڈ ہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اس صورت میں بھی آپ میک اپ کر کر کے اور ابائے پہن کے اور اوپر سکارف لے کے تو باہر نکل جائے گا, بس چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا وہ کچھ فرق نہیں پڑتا. نہیں, اس پہ سب ایگریڈ ہیں. یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی ہمارے مسلک میں تو یہ الاؤڈ ہے اور آپ تو یہ بتا رہے ہیں. سارے مسالک میں یہ بات ہے. نمبر فور بات کہ چہرے کا ڈھانپنا فتنے کی صورت میں ضروری ہے. اگر فتنہ ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پہ یعنی آپ جیسے ہمارے ملکوں میں بیک ہوم دیکھ لیں, وہاں پہ بہت ہی فتنہ ہے اس چیز کا کہ اگر آپ منہ کھول کے چلے جائیں, آپ اس طرح سے ہوں, کتنی آپ کو آوازیں پڑتی ہیں اور کتنی آپ کو کیا کیا ہوتا ہے, یہ سب کو آپ کو معلوم ہے. تو اس سے بھی کیا زیادہ کوئی فتنہ چاہیے؟ اس سے زیادہ فتنہ کیا مدینہ میں تھا؟ نہیں, اس سے زیادہ کیا فتنہ ہو سکتا. تو اس وقت فتنے کی صورت میں تو ضروری ہے. اب اختلاف صرف ایک امام ابو حنیفہ کے نزدیک, اختلاف صرف اس بات میں, اب اختلاف کو بھی سن لے اچھی طرح, کہ چہرے کے چھپانے میں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر زینت نہیں ہے, زینت نہیں ہے, اگر چہرے بالکل یعنی آپ بالکل جیسے کچھ بھی لگایا نہیں ہوا چہرے کے اوپر اور فتنہ بھی نہیں ہے, تو پھر چہرے کو اوپن کر سکتے ہیں. صرف یہاں پہ یعنی اختلاف ہے. یعنی اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب ہے. مستحب کا مطلب پسندیدہ, زیادہ بہتر, بیسٹ ہے. وہ کہتے ہیں بیسٹ ہے یا پھر واقعی ضروری ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ گڈ, بیٹر, بیسٹ. تو بیسٹ کے لیول پہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی کیا جائے. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ دوسرے کہتے ہیں کہ, یعنی امام ابو حنیفہ کا تو یہ کہ بیسٹ تو یہ ہے, لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری ہے, اٹس اے مسٹ. بیسٹ کی بات نہیں ہے, بیسٹ کرنے میں تو چوائس ہے نا آپ کی کہ آپ گڈ کے لیول پہ رہیں, بیٹر کے یا بیسٹ کے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں, دوسرا جو سارے ائمہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ضروری ہے, یہ ضروری ہے چہرے کا پردہ, جبکہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق یہ پسندیدہ ہے, مستحب ہے. لیکن پھر اگین وہ یہ نہیں کہتے کہ سب بیوٹیفل کر کے نکلا جائے. اچھا, اب یہ تو چہرے کے پردے کی بات ہو گئی. اب اس کے اندر یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تو تھوڑا سا جو اختلاف تھا میں نے بتایا چہرے کے پردے کا, باقی میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جلباب نہ اوڑھو. صرف اس کو لٹکانے کے معنی کے اندر جو تھوڑا بہت فرق ہوا ہے, بس اس کے اندر ہوا. اس کے علاوہ تو کسی نے نہیں کہا کہ جلباب ہی نہیں ہے. اب جو خواتین صرف سکارف پہن کے باہر نکل جائیں, اب وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم لوز کپڑے پہن لیتے ہیں, ہمارے کپڑے تو ٹائٹ ہیں ہی نہیں, ہمارے کپڑے کو فٹنگ والے نہیں, ہمارے کپڑے کو سلمے ستارے والے نہیں ہیں, ہمارے کپڑے کوئی بہت ڈیکوریٹو نہیں ہے, کوئی کڑھائیوں والے نہیں, سمپل ہم نے کپڑے پہنے. آپ نے چاہے سمپل پہنے ہوں چاہے لوز پہنے ہوں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر جو آپ کے کپڑے ہیں اس کے اوپر ایک جلباب ہونا چاہیے. جلباب از مسٹ, ایک بڑی چادر ہو. تو اب اس کو پھر آپ کہاں سے کریں گے؟ ارے کپڑوں کے اوپر ہی پہننی ہوتی, بڑی بڑی چادر کوئی صرف کپڑوں کے بغیر تو نہیں پہن لینی. بڑی چادر کا آپ کہاں سے لے کر آئیں گے پھر, یہ بتائیے. اس کو تو آپ سب سے چوٹ نہیں کر سکتے شلواروں کمیزوں سے, کیونکہ شلوار کمیز آپ کا جو نیچے کا ڈریس ہے وہ ہے, جلباب آپ کے اوپر کا ڈریس ہے جو کور کرتا ہے آپ کے نیچے کے ڈریس کو. تو اب اس کے اندر پھر کہاں سے ہم گنجائش لا سکتے ہیں؟ چلو آپ اس کے اوپر نہیں جاتے جہاں پہ اختلاف ہے. مثلاً میں کہوں کہ آپ حالانکہ بات سمجھ اچھی طرح آ گئی ہے, اور یقین کریں 38 تفاسیر. اب میں یہاں پہ ان کا ساروں کا نام بھی نہیں لے سکتی پورے, کیونکہ اتنی ساری تفسیروں کی کتابیں ہیں, ان کے کو کرنا تو اور مشکل بات ہے. چاہے تفسیر مظہر ہی لے لیں, تفسیر عثمانی لے لیں, آپ معرف القرآن لے لیں, آپ تفسیر القرآن لے لیں, آپ ابن کثیر لے لیں, آپ مطلب 38 تفاسیر میں یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ واجب ہے. اور یہ آیت حجاب سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ان سے چیز لو, ورنہ کیا ضرورت تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے چہرے کا پردہ تو ہے, لیکن اگر آپ اس چیز میں چلے جاتے ہیں, چلیں امام ابو حنیفہ کا آپ نے مذہب لے لیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, نہیں ہم میک اپ کر کے بھی نہیں نکلتے اور سب ہم چہرہ اوپن کر لیتے. اچھا چلے, آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جلباب کے نہ لینے کا کہاں سے پتہ چلتا کہ جلباب ہی نہ ہو اور صرف آپ سکارف لے کے باہر چلے جائیں, یہ کہاں سے پتہ چلتا؟ اس کی تو کوئی وضاحت کرے نا. اور یہ پھر اگین میں اس بات کو کہوں گی کہ کوئی میرا حکم نہیں ہے, کوئی کسی اور کا حکم نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی. اور اگر آپ کو اور اس کو مزید چیک کرنا ہے, میں تو آپ خوش ہوتی ہوں کہ اگر آپ جا کے خود بھی سٹڈی کیا کریں, خود بھی دیکھا کریں. آپ میری بات کو چھوڑ ہی دیں, آپ تفسیریں نکالیں, آپ ڈکشنریز نکالیں, آپ تحقیق کریں کہ کہاں کہاں پہ یہ اس کے بارے میں لکھا گیا اور کیا ہے, اور یہ کہ جلباب جو ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں, تو تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے. اور اس کے اندر یہاں پہ حجاب کی آپ کو دو قسمیں پتہ چل گئی ابھی تک کی آیات میں. ایک تو حجاب اسی چیز کا نام ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے, یہ اس کا پہلا حجاب ہے, نہیں باہر نہیں نکلے بغیر ضرورت کے, ایسے گھومتے پھرنا گھر میں ہمارا دل نہیں لگ رہا, ہم گھر میں بور ہوتے ہیں, ہم یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, گھر سے باہر نکلو, دل تنگ ہوتا ہے گھر میں, مجھے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے. نہیں, عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، وہ گھر میں ہی رہے گی، وہی اس کے لیے سب سے بڑی پروٹیکشن اور سب سے بڑا پردہ ہے. اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکلنے میں اپنی ضرورت کے تحت، جو جیسے ہمیں امہات المومنین سے، صحابیات سے پتہ چلتا ہے، جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا، سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، مریضوں کی عیادت کے لیے بھی جاتی تھیں، اسی طرح اپنے والدین رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی جاتی تھیں، اسی طرح کسی کے جنازے کے اوپر بھی، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں بھی گئیں، اور مسجدوں میں جانے کی ان کو اجازت تھی، تو اپنی ضروریات کے تحت وہ گھر سے نکلا کرتی تھیں، حج اور عمرے کے لیے بھی گئیں. ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی ضروریات کے تحت نکلا کرتی تھی اس طرح سے. لے کے آپ ضرورت کے تحت ضرور نکلیں، باہر جائیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور گھر آئیں. گھومتے پھرتے رہنا ایسے بیکار میں، ونڈو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، چلو آج ویسے ہی گھر سے باہر نکلتے، گھر میں دل گھبرا رہا ہے تو ذرا گھوم کے آئیں باہر، وہ چیزیں نہیں. تو اس چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا تو آپ کا وہ پردہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پردہ پھر آ جاتا ہے، اچھا اسی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جیسے ذمہ داری ہے کمائی کی، تو وہ بھی گھر سے نکل سکتی ہے، یہ بھی اس کی ضرورت ہے، وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے کمائی کرنے کے لیے، لیکن اپنے پراپر پردے میں. اور دوسری چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کس طرح جلباب کے ساتھ پھر اپنا پردہ کریں گے جب باہر نکلیں گے. گھر کے اندر تو آپ پروٹیکٹڈ ہی ہیں انشاءاللہ، جب باہر نکلتے ہیں آپ کسی بات کے لیے تو پھر آپ کیسا پردہ کریں گے، وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اب اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کا کاز بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ اسی لیے ہے تاکہ، پہلے بھی بتا دیا گیا تاکہ دل پاک رہیں، یہاں پہ بتا دیا گیا تاکہ آپ ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ستائی نہ جائیں، آپ کو تنگی سے بچانے کے لیے، آپ کو ستانے سے بچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہر حکم کی، اپنی حکمت جانتے ہیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ اعتراضات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی مملکت تو ہے نہیں، اب یہاں پہ تو پردہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تو یہ ہوگا ہوگا. اب پردہ اتارنے کی اجازت صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے، باقی کوئی ایکسیپشن بتائی نہیں گئی کہ اگر آپ اس کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پہ اتار دیں، اگر آپ اس دور میں پیدا ہو تو وہاں اتار دیں، اگر آپ کا ماحول ایسا ہو تو وہاں اتار دیں. نہیں، حکم سیم ہے ہر طرف کے لیے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کچھ جگہ پہ یہ دیکھا گیا، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ابایا پہن بھی لیتے ہیں، جلباب لے لیتے ہیں، لیا بھی لیکن اس کا مقصد بھی پورا نہیں کیا. یہ وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ چیسٹ کی ساری شیپ نمایاں ہو رہی ہے، ہپس نمایاں ہو رہے ہیں، یہ کس قسم کا جلباب ہے؟ آپ اگر چادر لیتے ہیں تو کیا چادر اس طرح کی ٹائٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اللہ کے دیکھو ہر حکم میں کتنی حکمت ہے، جلباب کہا اسی لیے. آؤٹر کوئی ایک اور شرٹ بھی کہا جا سکتا تھا، کوئی میکسی کہا جا سکتا تھا، لیکن جلباب کہا. اب جلباب سے کلوزسٹ ہونا ہے آپ نے، اب اتنی ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ پھر وہ اگین کمیز ہی بن گئی، میکسی بن گئی آپ کی. بعض عورتیں تو باقاعدہ ابایا کی فٹنگ کراتی ہیں کہ اتنی فٹنگ چیسٹ سے ہو، کمر اتنی ہو، اتنی. ٹھیک ہے، ایک حد تک تو فٹنگ آپ کریں گے، ظاہر ہے بالکل ہی ایکسٹرا لارج ہی پہن لے کوئی دبلی پتلی تو وہ ظاہر ہے وہ بالکل لٹکنے لگے گا، وہ بھی عجیب ہی وہ ہو جائے گی. لیکن ایسی فٹنگس کرانا جس سے اگین آپ کی فگر نمایاں ہونے لگے، اصل میں جلباب کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان کی جسم کی شیپ بھی نہ نمایاں ہو، کپڑے بھی نہ نمایاں ہو، زینت بھی چھپ جائے ساری، وہ اس کا مقصد تھا. آپ نے جلباب لے کے اور اپنے آپ کو وہ نمایاں کیا کہ میں اسمارٹ لگوں، بھولیا نہ میرا بگڑ جائے کہیں، تو اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. اسی طرح بعض دفعہ کوارٹر سلیوز پہن کے اوپر بڑا دوپٹہ پھیلا کے ڈال لیتے ہیں، پھر اوپر سکارف لے لیتی ہیں اور پن اپ کر لیتے ہیں دوپٹے کو. اب ذرا دیکھیں، ذرا آپ کا جلباب ہے یہ دوپٹہ پھیلا کے لینا، یہ تو جلباب نہیں. پھر وہ ذرا سا بازو اٹھائیں گے تو وہ سارا دوپٹہ تو پیچھے ہو جائے گا، ساری سلیوز آپ کے بازو سارے ننگے نظر آتے ہیں، یہ کہاں سے جلباب ہے؟ تو جلباب کا مقصد سمجھیے کہ جلباب کیوں ہے. چادر آپ لے کے دیکھیں، آپ ایک دفعہ और लेके देखें कि चादर में कितना नुमाया होता है आपका सीना, या कितना नुमाया होते हैं आपकी सब चीज, क्योंकि चादर वाकई सबसे ज्यादा सातिर है। सिर्फ उसको ज्यादा संभालने का मसला होता है कि जब काम करना हो, ड्राइव करना हो या कुछ है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए उसको आज के दौर में इस तरह से सी लिया गया, वरना ज्यादा सातिर जो है वो ज्यादा आपको छुपाने वाली चीज जो चादर ही है वाकई। अब इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि देखें ये आयत देखें और देखें इसके आगे पीछे सारा मुनाफिकीन का जिक्र है। ये उस वक्त के लिए जब मुनाफिकीन हुआ करते थे और वो छेड़छाड़ करते थे औरतों से और इस तरह। अब आज के वक्त में थोड़ी इस तरह से है, आज के वक्त में तो कोई ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए आज के वक्त के लिए ये नहीं है अहकामात। अच्छा, अब अगर आज के वक्त के लिए अहकामात नहीं है, तो सबसे पहली तो ये बात है कि यहाँ पे कहीं आगे कुरान की अगली सूरतों में कहीं पे भी ये दिखाया गया हो, ये बताया गया हो, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ गया हो कि अब ये हुक्म कैंसल हो गया, मनसूख हो गया, अब औरतों को इतनी मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है, बेचारियां ऐसे ही हिजाब जिलबाब लेती फिरेंगी, तो अब ये हुक्म मनसूख है रहती दुनिया तक, आखिर कुरान कयामत तक के लिए कि नहीं। हाँ, ये उसी दौर तक के लिए था सिर्फ। जब ये कयामत तक के लिए, तो अगर ऐसे हुक्म को कैंसिल करना होता, तो आज के उलमा की जरूरत थी कि वो आके कैंसिल करेंगे? खुद अपने होश के नाखून हम भी तो लें। अब उनकी बातें सुन के हम भी कहते हैं हाँ वाकई वाकई ये बात बिल्कुल सही है। मैंने पिछले दिनों ही एक इसी पर्दे के ऊपर एक प्रोग्राम देखा, जिसमें एक कोई रिनाउंड से ही स्कॉलर थे, जो कि यही बात कह रहे थे कि जो है ना, नहीं ये मुनाफिकीन थे तो इसलिए जो है। और ऐसे स्कॉलर उन लोगों को बहुत पसंद आते हैं ना, जो कि नहीं लेना चाहते जिलबाब। अल्लाह का हुक्म सामने है, खुद बताओ कि कहाँ पे है कि ये हुक्म कैंसल हो गया? ये मेरे और आपके फतवे देने से तो कोई कुरान का हुक्म कैंसल नहीं हो सकता। और ये कौन बता रहा है कि आज मुनाफिकीन नहीं है? आप दिलों के हालों को जानते हैं, मुझे बताएं कि उस वक्त में ज्यादा मुनाफिकत थी या आज ज्यादा मुनाफिकत है? खुद सच्चे दिल से बताइए। आज तो कोई सहाबा कराम जैसा दिल है ही नहीं किसी का। उस वक्त में तो सहाबा कराम जैसे दिल थे, फिर भी ये हुक्म दिए गए। मुनाफिकीन भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि मुनाफिकीन उस जमाने में थे और छेड़ाखानियां वो ही किया करते थे, इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन क्या आज सारी मुनाफिकत खत्म हो चुकी है? आज तो कभी नहीं किसी औरत को किसी ने छेड़ा होगा ना, ना कभी किसी के नाजायज ताल्लुकात किसी से आपने सुने होंगे। इतना पाकबाज माशरा आज आपका है, ये बताएं। आज तो मुनाफिकों को ढूंढते हैं हमें, हमें तो पता ही नहीं चलता मुनाफिक हैं कहाँ, बिल्कुल ही हमें नहीं पता है ना। वाकई ऐसा है? आप खुद एग्री करते हैं कि हमारे तो अपने मुल्कों का हाल क्या है, हम तो कहीं और जाते हैं तो फिर भी सुख का सांस लेते हैं, हम अपने मुल्कों को देखें तो और भी ज्यादा मुनाफिकत है। और जिन दूसरे मुल्कों में चले जाएं, काफरों के मुल्क में, तो काफरों का तो कोई दीन ईमान नहीं है, उनको तो कोई खुदा का खौफ नहीं है, उनको तो कोई कुरान नहीं है जिसमें उनको गज़े बसर का कहा गया हो कि अपनी नजरें नीची कर लेना। वो जब देखेंगे तो वो तो बिल्कुल आराम से आके किसी के पास जाके, किसी ने कहा, एक लड़के ने, मुसलमान ही थी वो मगर हाल हुलिये से जाहिर नहीं पता चलता, तो उसने जाके कहा कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? अब आप खुद बताइए, अगर वही लिपटी लिपटाई होती, अगर वही पर्दे हिजाब में होती, तो क्या वो इसी तरह की बात करता? तो इन लोगों के लिए तो बिल्कुल ओपन है। अब कोई औरतें ये कहती हैं, नहीं जी हमारे अंदर तो कोई इतनी अट्रैक्शन ही नहीं है, अब हमारे हमें किसने देखना, लो अब हमारे को दिन रह गए कि कोई हमें देखे, तो ये आप फैसला करेंगे? ये आपने फैसला करना है कि किसी ने आपको देखना है कि नहीं देखना। कई लोगों के लिए तो ठीक है चेहरा होगी अट्रैक्शन, कई लोगों के लिए बस जो वो चेहरे को थोड़ी देखते हैं, वो तो उनके लिए बस यही काफी है कि ये औरत है, बस उसको देखना, चाहे वो कितनी भद्दी है, चाहे वो कितनी आपके नजदीक, आप अपने नजदीक। वैसे तो कोई भी अल्लाह की मखलूक कोई ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आप समझती हैं कि नहीं मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन ऐसे करेगा, मैं तो मतलब है कि कोई ऐसा मेरे अंदर हुसन नहीं है, तो देखें ये मेरे और आपका फैसला करने की बात नहीं है। कई आदमियों के लिए इतना ही काफी है कि ये औरत है, इसीलिए आप देखते हैं कि जब अल्लाह ताला माफ करे रेप के वाकयात होते हैं, तो कोई एज नहीं देखी जाती, कोई रंग रूप नहीं देखा जाता, जिना बिल जबर होता है जब, तो तब भी आप देखें कोई औरत हाथ लग गई तो बस उनको इस चीज से कोई नहीं वर्स। इस चीज को हमें समझना है कि ये आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि अब मुझे मेरे कौन से ऐसे दिन हैं या मेरे कौन सा सा वो है या मैं कौन सी ऐसी हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और बात ये जो देखने की है वो है जिलबाब को, कि अब आप सोचेंगे कि जिलबाब कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। अब देखिए जब आप इसका मकसद समझ जाएंगी ना, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं बताया, कोई शेप नहीं बताई, कोई वो नहीं बताया, आपको खुद देखना है कि इट सेल्फ वो ऐसा ना हो जाए कि आप उसको इट सेल्फ ही जीनत बना ले, वो इतना चमकीला दमकीला है कि बस आपको दूर से आप चलती भी नजर आ रही है। जितना सादा हो उतना ही अच्छा है, जितना यानी कुछ उस पर ना लगा उतना ही अच्छा है। देखिए इस हिजाब के अंदर भी आप ये याद रखिएगा कि आप स्टार्ट तो कर लेते हैं एक स्टेप पे, लेकिन इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। जो लोग करते भी हैं वो भी इम्प्रूवमेंट इसमें देखेंगे, हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा जिलबाब ना हो कि इतना ही शोक कलर का हो, या फिर या तो उसके ऊपर इतना कुछ लगाओ कि वो इफ सेल्फी एक ड्रेस बन जाए, कि आपसे गैर मुस्लिम पकड़ पकड़ के कहें कि वाह कितना खूबसूरत आपने ये पहना हुआ है ना, यू लुक ब्यूटिफुल, इतना प्यारा आपका ये है। तो ऐसा भी ना जीनत वाला हो, ना ही ऐसा शोक कलर हो कि आप लाल रंग का जिलबाब पहन के खड़ी हो जाओ और आप कहें कि बस मैंने तो जिलबाब पहन लिया ना। ऐसा भी ना हो, ऐसा कोई डार्क कलर हो या कोई भी आपका कलर जिसमें अट्रैक्शन ना हो, जिसमें आप और ही ज्यादा मसीन ना लग रहे हो कि आप कोई शॉकिंग पिंक या रेड या इस तरह के जिलबाब पहन के आप ये समझे कि मैंने जिलबाब का मकसद पूरा कर दिया। जब आपको मकसद मालूम होगा फिर कलर डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। और हमें जैसे उस वक़्त की औरतों के अमल से पता चलता है कि जब ये हुक्म आया तो हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद अंसार की औरतें जब निकलती थीं तो इस तरह लकी छुपी चलती थी, गोया इनके सरों पर परिंदे या स्याह चादरें अपने ऊपर डाल लिया करती थी। तो इसे पता चलता है वो लोग उस वक़्त ब्लैक कलर की चादरें लेती थी। मगर अगेन ब्लैक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मगर अच्छा है अगर, क्योंकि ब्लैक में सादगी ज्यादा ना, इसमें शो नहीं है कोई ना, तो इसलिए। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ये अंसार की औरतें थी, इसका मतलब है कि उन औरतों ने भी जिलबाब किया, जिलबाब लिया। और इसी तरह हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर, तो उनसे उनकी भी रिवायात से हमें पता चलता है कि वो जिलबाब लेती थी और चेहरे को भी कवर करती थी। अब इससे ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी औरतों ने जिलबाब इस्तेमाल किया, चेहरों को कवर किया। और हम ये नहीं कह सकते कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन औरतों के अमल से देख सकते हैं उन्होंने इन आयात पे कैसे अमल किया, कि इसमें नमूना कौन होंगी, उस वक्त की औरतें, राइट या नहीं? क्योंकि अगर वो कोई गलत कर रही होंगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि आपने इस तरह से, तो अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो उन्होंने, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसके ऊपर अमल किया, आपने उनको अप्रूव किया, इसका मतलब वही है हमारे लिए तरीकाकार। फिर हम आज के किसी स्कॉलर के पास जाके नहीं पूछेंगे कि आप हमें बताएं, हम देखेंगे कि उन्होंने इन आयात पे कैसे अमल किया, वही सही तरीका होगा ना इन पे अमल करने। हज़रत आयशा फरमाती है कि एक पहले पहल जब हिजरत हुई तो महाजिर औरतों पर अल्लाह रहम करे कि जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने अपनी चादरों को फाड़ के उनके दुपट्टे बना के अपने चेहरों को ढांप लिया। ये बुखारी की रिवायत है, इससे पता चलता है कि उसके अलावा उन्होंने चेहरों को ढांपने के लिए अलग से अपने दुपट्टे फाड़ के और उनसे चेहरों को ढांपा। अब ये थोड़ी है कि चेहरों को कवर कर लिया होगा और बाकी नीचे टाइट कपड़े पहन के निकल गए, ऐसे थोड़ी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस दौर की खवातीन अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चलने का में वक्त का इंतजार नहीं करती थी, यानी जब हुक्म सामने आया उसके बाद ये नहीं कि अब अच्छा मेरा माइंड तैयार होगा कि नहीं होगा, अच्छा फिर देखूंगी, अच्छा सोचूंगी, अच्छा फलां से पूछूंगी, फलां से करूंगी, उससे तो मशवरा कर लूं, उससे तो ऐसे कर लूं, ये नहीं किया। या किसी और स्कॉलर से तो पूछ लूं, पता नहीं ये बातें सही भी बता रही हैं कि नहीं। फिर आप उन्हीं स्कॉलर के पास जाते हैं जिनका आपको पता होता है कि यहाँ पे कहीं कुछ रास्ता निकल आएगा। वरना ये तो रिवायात आपके सामने रखी नहीं है। और आयते कुरान, सबसे बड़ी चीज तो दलील है आयते कुरान, इससे बड़ा कोई स्कॉलर है कि जो बताए? कम से कम उस पे तो करो जो कि जिसमें सबका इत्तेफाक है। और हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अपने कपड़े को तकब्बुर से खींचेगा, यानी इतना लटकाएगा और उसको खींचेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ नजर करम नहीं करेगा। तो हजरत उम्मे सलमा ने सवाल किया था फिर कि औरतें अपने पल्लू का क्या करें, क्योंकि औरतें तो पीछे तक उनका नीचे तक जमीन तक आया होता है, लटक रहा होता है पीछे तक। आपने फरमाया उसे एक बालिश्त लटका लिया करें। उम्मे सलमा ने अर्ज किया तो उनके पाँव नंगे हो जाएंगे। आपने फरमाया तो वो एक हाथ लटका लिया करें, यानी इससे ज्यादा ना लटकाएं लेकिन इतना लटका लिया करें, यानी औरत को इजाजत है कि वो इतना लटका ले अपने कपड़े को, वरना मर्द के लिए इतना लटका के वो नहीं चलना। क्या आप यानी लंबे अबाया वगैरह भी हों तो लंबे हों तो वही बेहतरीन है, क्योंकि मर्द के लिए उसका लटकना अच्छा नहीं है, उनके तो टखने नंगे होने चाहिए ना, लेकिन औरत के लिए उसका लटकना अच्छा है, उसके टखने कवर्ड हो। असल में ये बात है, रिवायात तो इतनी सारी हैं, अगर मैं आपके सामने रखूँ ना तो सारा टाइम ही, तो टाइम का भी वो होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है हमारा, मगर कुछ चीज़ों को सिर्फ जहन में इस तरह से देख लें। बहुत सारी रिवायात मेरे सामने हैं जो कि उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से हैं कि उन्होंने ये किस तरह से इसके ऊपर अमल किया, और कितनी सारी रिवायात मिलती हैं कसरत से इस मामले में कि उम्महातुल मोमिनीन पर्दे में रहती थी और उनके पर जिलबाब के और उनके चेहरे को कवर करने के बारे में सब बात मिलती है। अब इसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, समझा दिया वह कि जो भी पर्दे के अहकामात हैं सूरह नूर में गुजर चुके हैं, अब भी लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं औरतें करती हैं, उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। मगर एक बात को जहन में रख लें, जैसे कि मैंने आपको यह हदीस पहले भी बताई है कि औरतें बहुत कम जन्नत में जाएंगी, और इसके ऊपर मैंने आपको वो रिवायत भी बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में बहुत ही कम औरतें दाखिल हो सकेंगी, जिस तरह कौवों में सुर्ख चोंच और सुर्ख पांव वाले कौवे बहुत कम होते हैं। ये कहा जाता है कि ये कौवे बहुत ही जिसको कहेंगे ना रेयर होते थे, रेयर, ज्यादा कौवे स्याह होते हैं, आपने देखा ही होगा, स्याह काले रंग के होते हैं, चितकबरे होते हैं, लेकिन ये वाले कव्वे बहुत कम होते हैं। तो जिस तरह ये कव्वे आ दूसरे कव्वों में, स्याह कव्वों में बहुत रेयर है, इसी तरह औरतें बहुत रेयर जन्नत में दाखिल होंगी। इसकी आप वजह नहीं सोचते कि क्या है इसकी वजह? एक वजह तो ये है कि देखें, औरत और मर्द का मैदान अमल डिफरेंट है। औरतों ने जिस फील्ड में काम करना है ना, जो उनका फील्ड है वो मर्दों का नहीं है। मसला नहीं, औरतों का घर रहने का हुक्म, पर्दे का हुक्म, उनकी और तरबियत का, बच्चों की और घर घरदारी का, शोहरों की खिदमत का, उनका फील्ड डिफरेंट है। मर्दों का फील्ड आउटसाइड वर्ल्ड है, वो बाहर जाते हैं, वो बाहर उन्होंने काम करने हैं, वो दयानतदारी कितनी करते हैं, वो अपनी दुकान पे अपनी जॉब में कैसे रह रहे हैं, वो किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, उनका चाल चलन और किस तरह से है, उनको नजरें ना उठाएं वो, और इस तरह के अहकाम उनके हैं। औरतों के भी वो नजरों नीचे रखने का हुक्म है, लेकिन आप ये देखें दोनों के फील्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है ना, उन पे ना नफके की जिम्मेदारी है, उनसे इन चीजों का पूछ होगी, तो दोनों की पूछ डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों के मैदाने अमल बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये सोचेंगे पता नहीं क्यों हमारा क्यों कह दिया कि हम कम जाएंगी, आप ये देखें मर्द जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उनका फील्ड अमल का है, आप देखें उसमें ज्यादातर मेजॉरिटी मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, चाहे वो नान नफके की हों, चाहे वो कारोबार की हों, जॉब की हों, जितनी भी ये जिम्मेदारियां हैं वो अपनी निभाते हैं, ठीक है। औरत जबकि अपने फील्ड में बहुत कमजोर है, आप देख लें इस पर्दे के मामले को ही, इसी तरह जुबान के इस्तेमाल के मामले को आप देखें, इन फील्ड्स में औरत कितनी कमजोर है ना, मर्द के ऊपर इतने ज्यादा मर्द जुबान दराजी और इस तरह से नहीं करते, इसलिए औरतों के बारे में मशहूर है औरतें औरत के साथ कोई बहस ना करे क्योंकि इनसे कोई जीत नहीं सकता, ठीक है। तो वो जो उनकी बातें हैं और जो जिस तरह गॉसिप्स और वो तो खैर अलग एक टॉपिक चला जाएगा, मगर वो अपने फील्ड में कमजोर है, मर्द अपने फील्ड में फिर भी उस तरह से पीछे नहीं है जिस तरह औरतें अपने अमल के फील्ड में पीछे हैं।
उनका अमल का फील्ड ये था, लेकिन उन्होंने इसमें कितनी कोताही की कि आज आपको मेजॉरिटी औरतों की नज़र आएगी जो बेपर्द है। यानी मुझे इत्तेफाक हुआ इस वीकेंड पे इफ्तार पे जाने का, और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना मुझे दुख हुआ इस चीज़ के ऊपर, जो मैंने देखा कि 95% औरतें उस मजलिस में, यानी जिलबाब तो दूर की बात है, सर पे कुछ ओढ़ा भी नहीं हुआ था, और ये इफ्तार की पार्टी थी, इफ्तार की दावत थी, एक बहुत बड़े हॉल में, रेस्टोरेंट में इफ्तार हो रही है, सुबह से शाम तक आप अल्लाह के खातिर भूखे प्यासे रहे, और अब अल्लाह की नाफरमानी ऐसी। कम से कम कोई रमजान का, कम से कम इस मजलिस का ही कोई अदब होना चाहिए कि हम रोजा खोलने जा रहे हैं तो अल्लाह को नाराज करके। मुझे हैरत भी हुई कि इनको कुछ कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने किसके लिए रोजा रखा हुआ। फिर उनमें से 50% मगरिब के लिए उठी, 50% बैठी रही। उस पर भी मैं हैरान थी कि क्या 50% आज नापाक है। बाद में देखने पे पता चला जब खाना लेने के लिए उठी कि अक्सरियत के गले में भी दुपट्टे नहीं थे, वो नमाज कैसे पढ़ती बेचारियां, जो गले में भी दुपट्टा ना डाल के लाई तो अब वो नैपकिन उठा के तो नमाज पढ़ने से रही। क्या उनको नहीं पता कि ये कौन सा महीना है? क्या उनको नहीं पता कि वो किस जगह जा रही हैं? तो ये तो हमारे हाल हो चुके हैं। औरतें बहुत हद तक डायरेक्ट डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करती हैं। ये तो कोई, यानी वैसे तो इताअत रसूल इसी तरह जरूरी है जैसे अल्लाह की इताअत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिन चीज़ों का हुक्म दे दिया ना, एक तो चीज़ें आपने हुक्म नहीं दिया, आपके तरीके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तरीके, आपकी उनसे मोहब्बत है, आप भी उन तरीकों से मोहब्बत करें, उनको फॉलो करें, नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया वो ऐसे ही है, उसको मानना जैसे कि आप कुरान को मान रहे हैं। इताअत रसूल ऐसे ही जरूरी है, आगे भी आप पढ़ेंगे। तो उन हुक्मों को लेना इतना जरूरी है, और कहां ये कि अल्लाह ताला डायरेक्ट हुक्म दे रहे हैं कुरान में, ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात। अब आपके पास कोई फरिश्ते नाजिल होकर कहेंगे कि नहीं जी आपको ये करना है, ये बताइए। डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म की मुखालफत आप कर रहे हैं, उसके खिलाफ चल रहे हैं, और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ जगह पे सिर्फ जिलबाब पहन लिया जाता है। और एक मिनट के लिए मुझे जरा अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा जिलबाब इस तरह का लिया गया होता है कि ऊपर का जो आपका स्काफ है वो अलग है, क्योंकि जिलबाब में ये चादर जो होती है उसमें तो एक पीस होता है ना, तो सारा आपका कवर हो जाता है, जबकि ऐसा अबाया पहन लिया जाता है कि उसके ऊपर जो स्कार्फ है वो इतना ऊंचा है कि वो गले के अंदर ही रह गया। अब जो भारी भरकम खवातीन है उनका फिर सीना नुमाया हो रहा है, क्योंकि जिलबाब इतना टाइट है, जो अबाया है वो इतना टाइट है, या वो वैसे ही भारी भरकम है, तो चाहिए तो ये था, अगर भारी भरकम नहीं भी है चाहिए तो ये था कि आपका स्कार्फ आपके आगे आए, जैसे चादर जब आप ओढ़ते हैं तो बिल्कुल नुमाया नहीं होती कोई चीज़। लेकिन फिर भी हमारे अबाया लेके भी स्कार्फ को ऊपर चढ़ा लेंगे, और स्कार्फ इतना ऊपर चढ़ा होगा कि फिर अगेन आपके ऐसे लगेगा कि एक लंबी कमीज आपने पहनी है, इस तरह से है। तो इसके मकसद को समझिए, जब आज तक आप मकसद नहीं समझेंगे तो इस तरह के पर्दे का करके भी उसके बाद भी उल्टे सीधे पर्दे, यानी बाज दफा तो इतना चेस्ट से टाइट होता है कि शर्म आती है देख के कि किस किस्म का बाया पहना, और ज्यादा मर्दों की नजर जाएगी। तो इसमें हम देखें कि हुक्म तो बिल्कुल वाजे है, हुक्म में तो कोई वो नहीं है आपको कि कोई समझ नहीं आने वाली बात। हाँ ये हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। आज ये वबा की तरह फैल चुका है, आज पता नहीं चलता बाहर निकलें कि मुसलमान औरत कौन सी है और गैर मुस्लिम कौन सी है, और कितने सारे अल्लाह के बंदों को फितनों में डाल रहे हैं औरतों के ये काम। अगर आखरत में ये सवाल हो गया हमसे कि आयत सुन के भी तुम बेपर्द क्यों रही, तो क्या कहेंगे? और ये ही नहीं है कि ये बेपर्दगी सिर्फ बाजारों में नहीं है, बल्कि घरों के अंदर भी, जहां पे कजन्स हैं, जहां पे खाविंद के भाई हैं, उनके सामने भी इसी तरह बेपर्द फिरते रहना, पूरी जेबो जीनत के साथ घूम रहे, तो ये भी बेपर्दगी है। अब कर ही लेते हैं अगर पर्दा, तो बस बाहर जाने के लिए करेंगे, जो घर में आ गया उसके सामने तो सारे हमारे भाई ही हैं। तो आपने देख लिया, मुंह बोले रिश्ते भी उस तरह से नहीं हो सकते कि आप उनको महरम समझ लें और पर्दे की सारे हदूद तोड़ दें। तो अपनी नजरों की भी हिफाजत करनी है, अपनी हिजाब को भी प्रॉपर करना है, और हिजाब के अंदर कुछ जो उसकी शरायत है उनको जरूर आप लिख लें, कि शेख नासिर अल्बानी ने जो कुरान और सुन्नत से देख के जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि ये होने चाहिए एक हिजाब में, किस बदन के एक्सेप्शनल हिस्सों के अलावा तमाम बदन को ढांपना चाहिए, मसलन है कि हाथ है या पैर है, इसके अलावा सारे जिस्म को ढांपने होना चाहिए उसको। फिर हिजाब ऐसा ना हो कि बजाते खुद ही वो जीनत हो, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ सेल्फी इतना डेकोरेटिव या कलरफुल हो। फिर हिजाब ऐसा मोटा हो कि इसमें से कोई अंदर की चीज ना नजर आए, ऐसा ना हो कि इतना बारीक हो, इतनी बारीक चादरें भी लोग लेते लेते हैं कि उसमें से भी कुछ नहीं छुपता। अगर हिजाब करके भी जिस्म आपका नुमाया हो रहा है और अंदर से सब नजर आ रहा है, तो फिर क्या फायदा? फिर हिजाब इतना तंग ना हो कि फिर वो टाइटनेस की मैंने आपको फिटिंग की बात बताई, फिर हिजाब पे ऐसे इतर या परफ्यूम वगैरह ना लगे हों जो फैलने वाली खुशबू हो, के बस खुशबू से ही पता चल जाए कि आप तशरीफ ला रही हैं। तो ये कुछ चीजें जो हमारे से मुताल्लिक हैं, और इसमें एक समझने की बात यह है कि हदीस में जैसे क्या आता है कि आखिरी जमाने में ऐसी औरतें होंगी कि जो कपड़े पहन के भी नंगी होंगी, कपड़े पहन के। तो आज तो बहुत सारी ऐसे नजर आती हैं जो कपड़े पहन के ही नंगी हैं, ताकि एक एक जिस्म का हिस्सा अलग अलग नुमाया। तो इस बारे में क्या कहेंगे फिर? बात यह, मैं नहीं समझती कि अब भी किसी को ये पर्दे के अहकाम समझ नहीं आए, ये कहना गलत होगा, ऐसा नहीं है। मसला कहाँ है ये जो हम बार बार पूछते हैं, किसी से पूछने चल पड़े, किसी को कहने चल पड़े, मसला यहाँ पे है कि ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि समझ नहीं आई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि और मसले हैं, फलाना मसला फलाना मसला, वो सारे मसले सब सॉल्व हो जाएंगे जिस दिन हमारा ईमान मजबूत हो गया, जिस दिन हमें ये यकीन हो गया कि हिसाब होगा, मुझसे सवाल होगा, मैं कैसे जवाब दूंगी, अल्लाह ताला ने मुझसे खड़ा करके पूछना है, कितने लोग हैं जिनकी नजरें मेरे ऊपर पड़ेंगी, मैं चमकीले दमकीले होकर जब घर से निकलती हूँ, चाहे ऐसा जलबाब पहन के निकलूं, या चाहे मैं ऐसे कपड़े पहन के निकलूं, या मैं ऐसे करूं, तो जितनी नजरें मेरे ऊपर पड़ी इन सब का मैं कैसे हिसाब दूंगी जो मेरी वजह से फितने में पड़े। जब ये यकीन हो जाएगा कि इस बेपर्दगी का सजा है, ये अल्लाह के हुक्म की मैं नाफरमानी करी, मैं अल्लाह के आगे खड़ी हो रही हूं, जब ये होगा कि कहीं इस बेपर्दगी की वजह से मुझे चंद दिन भी आग में रहना पड़ गया, तो क्या मैं इसको बर्दाश्त कर सकूंगी? क्या वो वर्थ है? क्या वर्थ है? अब इसमें जब हम ये कहते ना कि क्या हमने अपने शोहर से पूछा वो नहीं मानते, उससे पूछा वो नहीं मानता, और फला नहीं मानता और ये नहीं मानता, आप ये बताइए कि क्या शौहर के हुक्म के आगे या उनकी इजाजत से आप रब का हुक्म मानेंगे? किसका हुक्म बड़ा है, अल्लाह ताला का या शोहर का? किसका हुक्म, जिस किसका हक बड़ा है, अल्लाह का या शोहर का? जिस बात का हुक्म रब दे रहा है, क्या इसकी इजाजत इंसानों से मांगेंगी? कुछ सोचने की बात तो भी, मतलब कुछ जहन भी खोल लेना अपना, बाकी आप सब चीजों में समझदार हैं, इतनी बात को तो समझें कि घर वालों से, ससुराल वालों से पूछूंगी, फलाने से पूछूंगी, फलाने से पूछूंगी। जिस बात का आपके सामने आयत आ गई, जिस बात का रब ने हुक्म दे दिया, अब भी कोई गुंजाइश है कि आप इंसानों से पूछें? कोई बाकी रह जाती है गुंजाइश इजाजत लेने की? कितनी बड़ी एक तौहीन है ना रब के हुक्म की। अल्लाह ताला हमें माफ करे कि उसके ऊपर हम ये कहें कि हम अभी पूछेंगे उनसे, ये गोया वो बहुत बड़े हैं कि हम उनसे पूछेंगे। बाकी कैसे, हम तो खुद कन्विंस हैं, हम नहीं। असल बात ये होता है कि हमारे अपने अंदर बीमारी है, किसी को मत इल्जाम दे, ये हमारे अपने अंदर बीमारी है, हमारे अपने अंदर ईमान की कमजोरी है। अल्लाह का हुक्म तो वाजी है। चलो आप इख्तलाफ वाले मामले को नासिब, बाकी सारा तो आप अमल करो। और आप ये देख लें, यहाँ पे जब ये आयत आ गई ना, ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि जब अल्लाह को हुक्म आ जाए, आयत नंबर 36, वमा काना लिमुमिनी वला मुमिनातिन इजा कदल्लाहु व रसूलहु अमरन अन यकून लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत को कोई हक नहीं है कि वो अब फैसले करता फिरे कि अब मैंने क्या फैसला करना है अपनी जिंदगी के लिए, और मैं जब चाहूंगी, जो चाहूंगी, जिस तरह चाहूंगी, इस तरह से होगा। नहीं, फिर नहीं कर सकते आप। आपने तो कहा अपने अल्लाह को मानना है, आपने तो कहा उसके रसूल को मानते हैं। जब उनके फैसले आ गए, अब कोई गुंजाइश है कि अब आप फैसले करती फिरे? आपको किसने ये हक दिया? आप तो मुसलमान है। मुसलमान का मतलब ही है कि मेरा चाहे जितना भी जी चाहे, मेरा चाहे जितनी भी मेरे लिए, यानी मेरी नफ्स के खिलाफ हो, मेरी मर्जी के खिलाफ हो, मगर मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को झुका दिया अल्लाह की मर्जी के आगे। फिर उसके बाद आप कहें मैं मुसलमान भी हूं, मैं इस्लाम भी लाई हूं, और मैंने अपने आप को झुका भी दिया, उसके बाद फिर आप अकड़ के दिखाएं। और फिर अब अगर आपको ये है कि मैंने कुछ और लोगों से पूछना है, कुछ और उनसे पूछूंगी, सहेलियों से, कोई फलाने से, तो देख लें ये सूरत शुरू ही होती है और इसके अंदर दो दफा ये बात आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कह दिया गया, जिनसे कोई पॉसिबल ही नहीं था कि कभी वो काफरों की या मुनाफिकीन की इताअत करें, तो उनको कह दिया गया आपने इताअत नहीं करनी काफरों की और मुनाफिकों की, तो हम क्या इताअत कर लें? काफरों से पहले पूछें कि भाई आप उससे खुश होते हैं कि नहीं? मुनाफिकों से पहले जाकर तो पूछें, जिनके खुद दिलों में बीमारियां, उनसे जा जाके पूछते हैं जी आप इससे राजी हैं अगर हम इस तरह कर लें? उनसे इजाजतें लेंगे आप, उनकी इताअत करेंगे? और अगर किसी का डर है आपको, किसी का खौफ है, तो आगे बात आ रही है इंशाल्लाह आयत, उसमें और हम देख लेंगे। जब लोगों के डर रखेंगे, जब अपने से ज्यादा किसी को पावरफुल या इस तरह से अल्लाह से ज्यादा समझेंगे, तो फिर क्या उसका हाल होगा जिसने उनकी इताअत की, अल्लाह को, अल्लाह की इताअत को छोड़ के? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस तरह से पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सीनों को खोल दे, अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे और अपनी इताअत में जमा दे, और अल्लाह ताला हमें इस तरह से पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए जिससे आप राजी होते हो, जिससे आप खुश हो जाए मुझसे। मुझे अल्लाह की खुशी चाहिए कि लोगों की, जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, जिसको देखें। और अब रमजान का महीना है, अगर आप अब से शुरू करती हैं, और मैं आपसे ये कहूंगी प्लीज ये ना अभी सोचिएगा अच्छा अगर मैंने ये शुरू कर दिया फिर उसकी शादी होनी है, फिर उस पर कैसे जाऊंगी, अच्छा वो फिर वो ईद आएगी तो उसमें क्या करूंगी, अच्छा अभी फलां के अभी घर जाना है हमने, अभी फलां फलां से मिलना है, अभी पाकिस्तान जाना है और अभी फलां नई जगह जाना है, शहर पे जाना है, तो जरा वहां से हुआ हूं तो फिर उसके बाद कर लूंगी। तो अभी आगे का ना आप सोचें, इस बाबरकत महीने से इब्तदा करें और अल्लाह से मदद मांगे। जब कल की जिंदगी की गारंटी नहीं है, तो आप क्यों गारंटीज देती हैं कि मैं कल कर लूंगी और ये कर लूंगी? ये आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप कल करेंगे? और कल का दिन आ भी जाएगा आपकी जिंदगी में या नहीं? जब कल की जिंदगी की गारंटी नहीं, तो आपकी इस तरह के दावों की गारंटी क्या हो सकती है कि उसके बाद करूंगी और उसके बाद करूंगी? ऐसे लोग कभी नहीं कर सकते। तो इंसान को चाहिए वो, बजाय इसके कि आप कहें अच्छा अभी मैं पहले ये शुरू करूंगी, फिर उसके बाद वो शुरू करूंगी, फिर उसके बाद फिर मैं इस पे आऊंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी। नहीं, एक दफा ही आप डिसाइड कर लें कि बस अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कबूल करना है, मेरे लिए इसी में बेहतरी है। आपको क्या यकीन नहीं है कि अल्लाह के हर हुक्म में आपके लिए बेहतरी है? या तो ये कह दें कि नहीं, कुछ चीजें अल्लाह ने मुझे सताने के लिए ही भेजी है। हाँ, ये समझते हैं आप? क्या अल्लाह के हर हुक्म में आपके लिए बेहतरी नहीं है? क्या अल्लाह के हर हुक्म में हमारे लिए हिकमत नहीं है? कोई हिकमत है उसके पीछे या नहीं, या ऐसे ही बस दे दिए? जब हिकमतें हैं, जब हमारे लिए बेहतरी हैं, तो कबूल करने में क्या चीज रुकावट है? आप ये देख रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों को सुन के भी अगर हम ढीठ बने रहते हैं और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के हम जीना चाहते हैं, तो कितने दिन इन जवानियों पे आप इठला सकेंगी? कितने दिन इस अधूरे हुसन को, अधूरा ही कहूंगी मैं, ये भी कंप्लीट नहीं है जो मिला हुआ हमें, इस अधूरे हुसन की कितने दिन नुमाइश करेंगी? कितने दिन दिखावे करेंगी? कितने दिन लोगों की तारीफें लूट लेंगी? आखिर को तो अल्लाह के हजूर ही पेश होना है ना, फिर तो उसने सवाल करना है, और खुदा की कसम जरूर सवाल करेगा। अल्लाह ने सवाल करने हैं, उसने हिसाब लेने हैं जिंदगी के बारे में, जो करके आए उसके सवाल के जवाब जरूर देने पड़ेंगे। उस पर क्या जवाब देंगे? ये जो सारे बहाने हैं ना, फलां की शादी होनी थी, फलाना नहीं मानता था, मैं क्या करती, फलाने ने कहा था, फलाना नाराज हो जाता, ये सारे बहाने गुम हो जाएंगे, वो लोग भी नहीं मिलने जिन्होंने आपको मना किया था। तो इसलिए लोगों के कहने पे ना चले, अल्लाह को राजी करना सीखे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।